$10 کی ایک گرام اور جو غیر سرکاری ہے وہ $5 کی ایک گرام. تو وہ جو حکومت سوچ رہی تھی وہ ہوا نہیں,
وہ ہوا نہیں. اور ڈاکٹر صاحب مگر یوتھ کو آپ نے ان کی ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا نہیں شاید؟
نہیں نہیں, میں تو بہت اچھے سے دیکھا. پاکستان میں تو یہ بہت بڑی ایپیڈیمک ہے, یہ کینبس اور پھر ہارٹ اٹیک جو ہے, یہ تو ہم بڑے اچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں.
ویری سیڈ. اور
یہاں سے میرا تعلق ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے, جب آپ درہ آدم خیل کی طرف جائیں تو وہاں دکانوں میں جو ہے کینبس کے انہوں نے توے لٹائے ہوتے ہیں.
اچھا
سر, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نارتھ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں بڑی پوش سوسائٹی میں وہاں پر بھی دکانوں میں یہ بکتی ہے.
جی اللہ کی شان ہے, اور کیا
چاہیے, اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے, تیلے میں جان ہے. ڈاکٹر صاحب آئیے تھوڑا سا کینیڈا کے الیکشن کی جانب آئیں. آج ابھی ابھی انڈو شیئر کا بیان آیا ہے کہ اگر لبرل جو ہیں وہ ون نہیں کرتے تو مطلب ان کو کوئلیشن کی بات نہیں کرنی چاہیے, جسٹن ٹروڈو کو ریزائن کر دینا چاہیے, گورنمنٹ کیسی بنے گی, ویک بنے گی, اسٹرانگ بنے گی, آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں.
ابھی کچھ کہنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ لبرلز واپس آئیں گے. اینڈریو شیئر اور کنزرویٹوز کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کھیل میں کوئی ان کے ساتھ کھیلنے کو شریک نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی کہ اگر ایک وہ بچے بیٹھے ہوں گراؤنڈ میں اور کھیلنا چاہ رہے ہوں تو کوئی ان کے ساتھ کھیلنا نہ چاہے, تو یہ بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے اور یہ بڑی ریالٹی ہے ان کے لیے کہ کوئی بھی ان سے کوالیشن نہیں کرنا چاہتا. تو اس پورے خیال سے دیکھا جائے تو لبرل کی پوزیشن اسٹرانگ نظر آتی ہے, وہ اس لیے کہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم سے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھیل رہا, لہٰذا جو دوسروں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وہ الگ ہو جائیں, یہ عجیب بات ہے. لیکن یہ کہ یہی حکومت اگر کہیں ان کو زیادہ لیڈ مل گئی کنزرویٹوز کو, تو یہ بھی پوری کوشش کریں گے ایک کوالیشن گورنمنٹ بنانے کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے الیکشن کراؤ, کسی کی میجورٹی نہیں ہے, ہماری زیادہ سیٹیں ہیں لیکن ہم کوالیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کوالیشن ہی لگتی ہے, زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوبیک میں کیا ہوگا. ہوا یہ کہ کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ تھے ایس این سی لیول ہیں پہ کنزرویٹو, اور یہ اتنے حملے کر رہے تھے اس پہ فیوڈوں پہ, تو سارے حملوں میں ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ان کو کوبیک سے اب ووٹ نہیں ملے گا, کیونکہ کوبیک میں جو ووٹنگ بلاک ہے وہ اس بات پہ حد نالا ہے کہ ایک کوبیک بیسڈ کمپنی اور کوبیک بیسڈ جابس پہ ان لوگوں کا اتنا سخت رویہ تھا جس کا اب یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اور تو لہٰذا اگر بلاک وہاں سے زیادہ ووٹ نہیں لیتا اور لبرلز کو سیٹیں ملتی ہیں تو یہ کافی انپریڈکٹیبل ہوگا. جو این ڈی پی ہے اس کی دال زیادہ گلتی نظر نہیں آ رہی, وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یونیورسٹی ٹاؤنز میں جہاں جہاں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں یونیورسٹیوں کے ارد گرد ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں. تو وہ جو جیک لیٹن کی وجہ سے کوبیک میں جو بڑا ریولیوشن آیا تھا اورنج ریولیوشن, تو اس کی تو کوئی مشابہت ابھی نظر نہیں آتی. یہ تو اگر ایک دو سیٹیں بھی وہاں سے مل جائیں تو بڑی بات. تو مقابلہ یہی میں ہے کنزرویٹوز میں اور لبرلز میں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سببز ہیں ٹورانٹو کے جو 905, اگر یہ کنزرویٹوز کی طرف نہیں جاتے تو لبرلز کافی اسٹرانگ پوزیشن میں.
کوبیک میں ڈاکٹر صاحب دا فائٹ از بٹوین بلاک کوبیک وا اینڈ لبرلز, کنزرویٹو اینڈ این ڈی پی, تو آئی ڈونٹ تھنک دے کین میک اینی.
مگر آپ کو پتہ ہے کہ کنزرویٹوز نے کوبیک وا کو سپورٹ کیا کیا ہے, انہوں نے بلٹ, کیونکہ ان کی سب سے بڑی جو اس وقت ویکنیس بنا ہوا ہے بل 21 ہے.
مگر کوبیک وا نے, آپ سنا نہیں کہ پارٹی کوبیک وا نے کہا کہ ہم کوالیشن اس کے ساتھ نہیں بنائیں.
وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بچے کھیلنے کے لیے تیار ہیں مگر کوئی ان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں چاہتا.
Nobody wants to play with him. Nobody wants to play with him. So, ابھی اوپنلی آتا ہے تو لوگ بھی جو ووٹرز ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ بھئی کیا برائی ہے کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ آنی نہیں چاہتی.
I totally agree. مگر میرا کہنے کا ماجد بھائی مقصد یہ ہے کہ کیوبیک میں یہ بل 21 پہ ان کو سپورٹ کریں, کیوبیکرز کو ون کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں.
That's okay. جی ڈاکٹر صاحب,
جی بل 21 جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوبیک جو ہے وہ ایک بڑی مختلف ایک معاشرہ ہے, اور وہاں پر جس کو وہ یہ کوبیک سائلنٹ ریولیوشن کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت دبے ہوئے تھے रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है उसका बड़ा कंट्रोल था तिब्बत में. फिर ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता वहाँ साइलेंट रेवोल्यूशन आया और ये चर्च का इन्फ्लुएंस उन्होंने खत्म किया और इसको खत्म करने में भी उनको बहुत अच्छा लगा. लेकिन वहाँ उन्होंने ये जो स्टेट और चर्च का जो सेपरेशन किया है वो बड़ा स्ट्रांगली किया है. तो इस लिहाज से जब वो आप उनको देखें तो वो कहते हैं कि जब हमने चर्च को अलग कर दिया इसने तो हम बाकी मजाहब को अपने को भी उसी तरीके से डील करेंगे जिससे हमने अपने अपनी मेन क्रिश्चियनिटी को और ऑर्गेनाइज रिलीजन को डील किया. तो ये चीजें समझने की है कि वो सोसाइटी खाल किसी एक मजहब से या किसी एक मजहबी मकतबा फिक्र से उनका कोई ऐसा सरोकार नहीं है. वो सिर्फ ये कि उनका उन्होंने जो अपना नुकता नजर बनाया कि हम सरकारी तौर पर किसी भी मजहब की पैरोकारी को ये ओवरटली जो है उसको नहीं सपोर्ट करेंगे. तो ये बड़ी डीप रूटेड फीलिंग है वहां पर क्वेबेक में. और क्योंकि लोग क्वेबेक जाते नहीं और ज्यादा उनका ताल्लुक नहीं है क्वेबेकर्स के साथ तो वो इस चीज को थोड़ा उसकी डीपनेस को समझने से कासिर है. तो जरूरत है कि आप हम जो है ना क्वेबेक की जो पिछले 70-80 बरस की हिस्ट्री है उसको देखें और वहां जो सोशल मूवमेंट आई उसके तनाजर में आप देखें उस बिल को तो थोड़ी बहुत समझ आती है.
डॉक्टर साहब ये तो समझ में आ गई हमारे बात के बिल 21 की. मगर जब व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर एनडीपी ने जो अपना एजेंडा दिया हुआ है हेल्थ केयर पर एवरीथिंग इज फ्री आई मीन आई लव इट. मतलब बॉटम लाइन इज कि कोई उनसे क्वेश्चन करे कि वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम.
इस हिसाब से तो पाकिस्तान में भी हेल्थ केयर फ्री है. आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं कोई देना नहीं पड़ता. लेकिन उन अस्पतालों का जो हाल है वो आपके सामने. ये फ्री करके डिस्पेंसरियां बना देना अस्पतालों को आसान काम है लेकिन अस्पतालों को उस तरीके से चलाना जिस तरीके से यहाँ चल रही है बड़ा मुश्किल काम है. अब ऑन्टेरियो को देख लें. अच्छा दूसरी बड़ी बात यह कि देखें वो जो हेल्थ है ना वो प्रोविंशियल मैटर है. तो एनडीपी का प्रोविंशियल मैटर में इंटरफेयर करना इस सब तक कि जो कहना हम इसको फ्री कर देंगे तो वो भी समथिंग दैट दे विल हैव टू लर्न. क्योंकि इनको तो वो टैक्स पेस ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास के जाकर हेल्थ केयर को फ्री करें. दूसरी शायद ये है कि ये जो ऑन्टेरियो को ले लीजिए ऑन्टेरियो में जो सरकार है ऑन्टेरियो की वो जो खर्चा करती है तो तकरीबन 50-55% खर्चा सरकार का सिर्फ हेल्थ केयर पे है. बाकी चीजों को अलग कर लीजिए 50-55% खर्चा जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर का है और ये मुमकिन ही नहीं है उनके लिए कि वो इससे ज्यादा खर्च कर सकें. तो यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट कि ना रिसोर्सेज हैं ना कोई आइडेंटिफाइड न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम है रेवेन्यू है और अचानक हम हर एक को फ्री कर देंगे मुमकिन नहीं है. आई थिंक दे वुड थिंक थ्रू इट. ये काफी मुश्किल काम.
डॉक्टर साहब हर चीज के बारे में बात की गई है एक अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में क्या चीज ये प्रोवाइड करेंगे. एक जो बड़ी उम्र के लोग हैं और कनाडा में एजिंग पॉपुलेशन है भी बहुत ज्यादा उनके बारे में कोई प्लेटफॉर्म किसी ने अपना नहीं दिया. अगर दिया तो क्या दिया.
ज्यादा जो फोकस रहा है वो मिलेनियल्स पर और फर्स्ट टाइम होम बायर्स पर है. तो जो लिबरल्स हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए शेयर्ड इक्विटी मॉर्गेजेस का ऐलान किया जो सितंबर में शुरू भी हो गई क्योंकि उन्होंने मार्च में बजट में ऐलान किया था जिसके तहत ये होगा कि अगर आप एक नया घर ले रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपके 10% प्राइस उस घर की प्राइस देगी जो पहले 5 लाख की लिमिट थी अब 8 लाख तक बढ़ा दी गई है 3 शहरों में मॉन्ट्रियल टोरंटो और विक्टोरिया में. इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट आपको $80,000 तक दे देगी जो डाउन पेमेंट नहीं होगी और उसके साथ वो 10% आपके मकान की मालिक भी हो जाएगी. तो जब आप बेचेंगे अपने घर को तो जो उस घर की जो सेल प्राइस है उसका 10% सरकार को जाएगा लेकिन उसमें जो मनी वो आपको अभी देंगे उससे आपको डाउन पेमेंट में सहूलत हो जाएगी. तो ये इतना था. जो दूसरे हैं कंजर्वेटिव हैं उनके 3-4 पॉइंट थे. एक तो ये कि वो स्ट्रेस टेस्ट को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम होम बायर्स को रिलीफ किया जाए. कंजर्वेटिव ये भी चाहते हैं कि वो जो मॉर्गेज है इंश्योर्ड मॉर्गेजेस हैं जिनकी अमोर्टाइजेशन पीरियड 25 साल है उसको वो बढ़ा के 30 बरस करना चाहते हैं. यही बात एनडीपी भी सपोर्ट कर रही है. और उसके अलावा ये दोनों लिबरल्स एनडीपी और कंजर्वेटिव जो घर हैं उनको ग्रीन करने के लिए और एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए कोई $5,000 को $10,000 तो इससे ज्यादा देना चाहते
हैं. कंजर्वेटिव दे आर ऑफरिंग $20,000.
जी
20,000 डॉलर्स. मगर ये सारे टैक्स क्रेडिट हैं डॉक्टर साहब. ये इट इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट फेवरिंग एनीबॉडी. मगर लिबरल्स जो है वो कहते हैं कि हम 100,000 अफोर्डेबल हाउसिंग बना के देंगे. आई मीन देयर इज प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय.
$10,000, 10,000 homes per year over a 10-year period.
Exactly.
That is the plan from liberals.
First-time buyers ke liye.
First, नहीं वो नए घर कोई भी ले सकता है.
Yes.
इसी तरीके से जो NDP है वो चाहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम 2.5 लाख घर बनाएंगे पहले 2.5-3 सालों में और क्या कहते हैं 5-10 सालों में उनको 5 लाख घर बनाएंगे 500,000 अफोर्डेबल होम्स का. इसी तरह जो लिबरल्स हैं वो रेंटल कंस्ट्रक्शन में $10 billion भी डाल रहे हैं बल्कि बजट में डाल चुके हैं पहले से. तो ये सारा फोकस फर्स्ट टाइम होम बायर्स पे, ये क्योंकि सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ये नया बहुत बड़ा वोटिंग. और जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं उनमें भी ना वो लिबरल होते हैं ना कंजर्वेटिव होते हैं, उनकी अभी तक वो पोलिटिकल अलाइनमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती. तो ये सारे कोशिश करेंगे किस तरह उनको सही काम की अपनी तरफ ले आए. सीनियर्स का मसला ये है कि सीनियर्स जो हैं वो पिछले जो सीनियर्स थे पहले के उनसे थोड़े मुख्तलिफ हैं. एक तो ये हेल्दी ज्यादा हैं जो कि अच्छी बात है, दूसरी बात ये कि ये इनके पास थोड़े वसाइल भी हैं और पहले की नस्बत माली वसाइल. तीसरी बात ये है कि जिसको हम सारी दुनिया में देखते हैं मोस्ट ऑफ जो डेवलप्ड कंट्रीज द फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एजिंग इन प्लेस, तो बुजुर्ग जो होते हैं लोग वो बजाय से कि ओल्ड होम में जाएं अब वो अपने ही घर में सीनियर होना चाहते हैं ताकि जितना अच्छा वो रह सके. तकरीबन ये होता है कि वो जिंदगी के आखिरी 3-5 माह के अलावा बाकी तमाम तर जिंदगी उसी घर में गुजारना चाहते हैं जिसमें वो पहले से रह रहे थे. एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एजिंग इन प्लेस. तो उसमें जो उनको सहूलतें देनी होती है वो प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स में थोड़ा सा क्रेडिट चाहिए होता है क्योंकि आमदन कम हो जाती है टैक्स उतना ही रहता है. मगर लगता ही है कि जो खुशहाल सीनियर हैं जो मुआशी तौर पर खुशहाल हैं उनको ज्यादा मदद की जरूरत है, जिनको जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ताकि किसी तरीके से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है मुतासर ना हो. और इस बारे में कोई बड़ी किसी भी पार्टी ने कोई बड़ी बात नहीं की.
मेरे लिबरल्स डे के आए ना कि 75 ओल्ड एज सिक्योरिटी को वो 75 पे ले आके 10% एंड इंक्रीज द कायरा पेंशन प्लान बाय 25% फॉर विडोर्स एंड उनके लिए विडोर्स एंड विडोर्स के लिए. और वो जो कंजर्वेटिव है उन्होंने $1,000 का टैक्स क्रेडिट दिया है.
जी जी, लेकिन वो देखें ना सारी जब आप इनको इन सारी चीजों की कुवत खरीद काफी महदूद है.
एग्जैक्टली जी.
डॉक्टर मुर्तजा हैदर हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब, कंजर्वेटिव सॉरी एनडीपी ने ये कहा है कि वो मिल्स के गवर्नमेंट बना सकते हैं लिबरल के साथ, मगर उन्होंने फर्ज करें अगर ये सिनेरियो आता है कि कंजर्वेटिव को जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, और एनडीपी तो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या सिनेरियो आएगा?
मसला तब बनेगा कि कंजर्वेटिव मेजोरिटी सीट्स लेगा और लिबरल्स प्लस एनडीपी जो है वो उनकी सीट्स इतनी हो जाए कि वो गवर्नमेंट बना सकें. तो तब मसला बनता है क्योंकि वो देखने में बुरी बात लगती है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट ली है वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, लेकिन ये कि जो बाकी पार्टीज मिलके वो उस पार्टी को बीट कर देती है.
मगर डॉक्टर साहब, लेट मी स्टॉप यू हियर फॉर वन सेकंड. अगर ये सीटें डे की भी चले आती है तो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 38% या 35-38% ऑफ ऑल द वोटर्स.
जी जी,
है ना. तो ये हाउ कुड यू गेट अपसेट व्हेन यू आर ओनली सपोर्टेड बाय 35-38% ऑफ द वोटर्स. यू आर नॉट रूलिंग बाय द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी सीट्स आपके पास आ सकती हैं, मगर यू स्टिल हैव 35% ऑफ द वोटर्स.
मगर वो हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला हो गया ना.
एग्जैक्टली,
हिलरी क्लिंटन को मेजॉरिटी वोट मिला था और
डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा
सीट्स मिल गई थी. तो मतलब रोना तो उनका हक बनता है कि हम जीत भी गए हैं तो हमें पोजीशन नहीं दे रहे.
ये बात जो ये जो कर रहे हैं अभी एंड्रयू शेयर साहब कि भाई अगर मैंने एक सीट या 10 सीट से ज्यादा ले ली तो जिसके पास ज्यादा सीटें हैं वो गवर्नमेंट बना ले. भाई हाउ कुड यू टॉक लाइक दैट.
मुमकिन नहीं है ना. उनको इतनी अकल है, वो जानते हैं. ये कहने की बात है, देखिए पहले बजट में ही गवर्नमेंट बैठ जाएगी. पहले बिल पे जिस दिन आपका बिल कैरी नहीं होता उस दिन आपको गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है. ठीक है, तो पहले दिन ही हो जाएंगे इनके खिलाफ. तो ऐसी बात नहीं है कि वो जाके गवर्नमेंट बना लेंगे ज्यादा सीटों पे. आखिर उन्हें बिल भी लाना होता है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस चलाना होता है, उसके लिए आपको मेजोरिटी सीट वोट चाहिए होते हैं. वो इनके पास होंगे नहीं, वो लिबरल्स और एनडीपी के पास होंगे. बल्कि लिबरल्स और एनडीपी नहीं, बल्कि लिबरल्स और ब्लॉक के पास होंगे. तो ब्लॉक के साथ भी उन्होंने अपने ये they burned their bridges with Quebec. इसका ये अब बहुत अरसे तक इस इलेक्शन में बहुत लंबे अरसे तक अपने इनको नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन ये है कि once the dust settles, उसमें सिर्फ ये देखना है कि what percentage of the vote goes to conservatives and how much vote is pulled against them in case they win the majority of the seats. और जिसमें आपने कहा ना कि अगर उनको 30-35% वोट पड़ता है तो फिर आपके खिलाफ जो है 62% वोट का है तो मेजोरिटी स्टिल वोटिंग अगेंस्ट यू.
एग्जैक्टली.
डॉक्टर साहब, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है कि देयर वाज अ टाइम कि हर लेवल पे लिबरल की गवर्नमेंट थी. ख़ासतौर पे अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करती हूँ तो हमारे सिटी लेवल की बात कर लें तो जो हमारी मेयर थी लिबरल थी. कैथलिन विन हमारे प्रोविंस के लेवल पे थी ओंटेरियो के, और लिबरल तो फेडरल में तो थी ही थी, मगर डिलीवरी कोई इतनी क्लासिक नहीं रही. इंटरनल लेग पुलिंग या लैक ऑफ प्लानिंग व्हाट इट वाज, यानी आप देखिए कि सड़कें हैं तो वो कंजेस्टेड नज़र आती हैं, हॉस्पिटल सिस्टम है, माना हेल्थ सिस्टम, वरना तो हम यही ब्लेम करते रहते हैं ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है. व्हेन ऑल द थ्री वर सेम, दे कुड हैव डन समथिंग विच नोबडी कुड हैव डन एवर बिफोर, तो व्हाई दे डिड नॉट डिलीवर इट.
उसकी वजह ये है कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं. मसलन जैसा पाकिस्तान में मियां साहब जो है वो नवाज शरीफ के कर्ता धर्ता हैं, और उस नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग के कर्ता धर्ता हैं, तो वो किसी भी लेवल पे कोई भी यानी काउंसिलर से लेकर MNA तक या सेनेटर तक वो सारे फैसले जो है वो दोनों भाइयों के दरमियान में होंगे, शरीफ बरादरान के. यहाँ बिल्कुल खतन मुख्तलिफ है. यहाँ जो फेडरल लिबरल्स हैं उनका बहुत कम इन्फ्लुएंस है प्रोविंशियल लिबरल्स पे, और जो म्युनिसिपल पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक ए पॉलिटिकल होती है, उसमें पार्टी बेसिस पे इलेक्शन भी यहाँ नहीं होते. तो कहने का मकसद ये है कि जब तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कटे हों तो भी बहुत मुश्किल होता है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोग अब एक बात पर मरकूज हो जाए. कोई जो है वो पुल बनाना चाहता है, कोई सबवे बनाना चाहता है, कोई हाईवे बनाना चाहता है, और इसी लड़ाई में तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है जिन्होंने वन थर्ड पे करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो एग्री नहीं करते. तो मतलब लिबरल्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनवाया, वो बड़ी धूमधाम से बनाता है, जनाब सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होंगी, और उसके बाद हम हर जगह बसें और सड़कें बना देंगे और ट्रक बना देंगे और सबवे बना देंगे. उसमें 4 साल के बाद पता चला कि साहब बड़ा मुश्किल काम है, जो चीज आप फंड करना चाहते हैं वो म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती, जो म्युनिसिपैलिटी चाहती है वो प्रोविंस नहीं चाहता, जो प्रोविंस चाहता वो दूसरे को नहीं चाहते. तो ये ग्रिड लॉक सिर्फ ऑन्टेरियो का नहीं है, ये ब्रैम्पटन का नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिड लॉक जो है जिसमें हमारी जो क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि जब पैसा हो भी तो हम उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो फेयरली लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारे एफिशिएंट नहीं है. यही हाल क्वेबेक में है, यही हाल आपको दूसरे
प्रोविंसेस
में भी नजर आएगा.
डॉक्टर साहब, एक चीज लोगों को समझनी चाहिए कि लोग ब्रैम्पटन की बात करते हैं कि हमको अब फेयर शेयर नहीं मिला. फेडरल गवर्नमेंट हैज सो मेनी म्युनिसिपैलिटीज इन ऑल ओवर कैनेडा. कोई एक म्युनिसिपैलिटी तो है नहीं कि ब्रैम्पटन या टोरंटो.
नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए कहते हैं माजिद भाई कि ब्रैम्पटन में से 5 मेंबर पार्लियामेंट थे, 5 के 5 लिबरल को रिप्रेजेंट कर रहे
हैं.
और आप देखिए
गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर,
अगर आप बाकी म्यूनिसिपैलिटीज, आपको पता है कि उस दिन पैट्रिक ब्राउन ने, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने यही तो बात कही थी कि ब्रैम्पटन में अगर क्राइम रेट ज्यादा है तो 1000 पीपल के ऊपर एक
पुलिस ऑफिसर. बताओ मैं आपको, यहाँ पर भी वही सिस्टम चलता है जो डॉक्टर साहब मुझे आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ कि वो वहां पर जहां पर ये वेरी क्लोज रेसेस होती है ना इनकी, इस इलेक्शन में जैसे क्लोज रेस है और नेक्स्ट इलेक्शन में पता लगा कि या हम हार सकते हैं या जीत सकते हैं, तो उस इलाके को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देंगे.
इस दफा डिलीवरी तो कोई नहीं रही ना, फॉर ग्रांटेड लिया ब्रैम्पटन को. मतलब 5 हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स थे, 5 के 5, और उन्होंने बस ये कहा कि इट्स अ पीस ऑफ केक, यू नो हु केयर्स. आप इमेजिन कीजिएगा कि आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप मॉल्स में चले जाएं जहां हमारी कम्युनिटी ज्यादा है, वहां पे वही जैसी जी मेरे एक लिसनर हैं जिनको शायद मेरी बात पे एतराज भी होता है, मगर हम कॉम्प्रोमाइज तो होता है हमारी कम्युनिटी पे. इज दैट राइट और रॉन्ग डॉक्टर साहब?
देखिए ब्रैम्पटन में जो आपने मसाले बताए ना, सड़कें कंजेस्टेड है, ये भी प्रोविंशियल मैटर है, अस्पतालों में मसाइल है, ये भी प्रोविंशियल मैटर है, मॉल्स में चले जाए ये म्युनिसिपल मैटर है. जो सरकार है फेडरल गवर्नमेंट, आप मेंबर पार्लियामेंट भेज तो रहे हैं लेकिन वो मेंबर पार्लियामेंट जो है उसकी जिम्मेदारी करेंसी है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है। ये जो जैसे पाकिस्तान में होता ना, आपने घर में नलका लगवाना है तो आप जाके एमएलए से मिलते हैं, यहाँ वो चक्कर नहीं है। मतलब दीज गाइस डू नॉट हैव ज्यूरिस्डिक्शन। यहाँ तो याद है जब बराक ओबामा के प्रोफेसर दोस्त की पुलिस वाले से लड़ाई हुई कांस्टेबल से, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाट ही कुड डू ओनली इफ इन दोनों को पिला के कॉफी और ड्रिंक्स पिला के तो सुलह करवा दी। उससे ज्यादा तो वो
कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर मुर्तजा हैदर मसर, डॉक्टर साहब मुझे एहसास है अब अपनी यूनिवर्सिटी से आने के बाद अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम में से आपने हमें टाइम दिया है, आपका बेइंतहा शुक्रिया। वोट जरूर डालें, इसके बारे में लोगों को मैसेज दे दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है रियासत के साथ जो आपका ताल्लुक है वो दो चीजों की बुनियाद पर है, एक वोट पर है, दूसरा टैक्स पर है। टैक्स देना ना भूलिए और वोट डालिए, क्योंकि वोट की जो हुरमत है वो बड़ी जरूरी है, इसी के जरिए आप चेंज ला सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरह ऑन्टेरियो में लिबरल्स ने डिलीवर नहीं किया तो किस तरीके से वो मेजोरिटी के टोटल 7 या 8 सीटों पर आ गए। यहाँ वोट जरूर काम करते हैं और आपके वोट की बड़ी बड़ी कीमत है, बड़ी वैल्यू है, और चाहे किसी को भी दीजिए, अपने कॉशिस पे दीजिए, अपनी अपने इलाके की भलाई के लिए दीजिए और जरूर वक्त निकालकर वोट दीजिए।
डॉक्टर मुर्तजा हैदर आपका बे इंतहा शुक्रिया। वी लुक फॉरवर्ड इलेक्शन डे पे हम आपसे बात करके यकीनन आप को साथ शामिल गुफ्तगु रख सकें, अल्लाह करे ऐसा पॉसिबल हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हमारे अपने डॉक्टर मुर्तजा हैदर हमारे साथ थे। एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ूंगी आपको। और साहब भारतीय दहशतगर्द जो कुलभूषण यादव है, काउंसलर की रसाई उनको फराहम की जा सकी है और इसके अलावा वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मजीद इकदाम जारी हैं। उनकी फांसी की सजा पर नज़रसानी का मशवरा पाकिस्तान ने गौर इस पर करना शुरू कर दिया है। और जो हमारे हैं तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा है कि भारतीय दहशतगर्द जासूस को पहले ही काउंसिल की रसाई जो है वो फराहम की जा चुकी है, जबकि लॉजिकल और कानूनी प्रोसीजर से मुतल्लिक इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जुमेरात को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव से मुतल्लिक सवाल के जवाब पर उन्होंने बताया कि भारतीय जासूस को काउंसिल की रसाई मिल गई है, बाकी प्रोसीजर ऑन द वे हैं। और आपको याद होगा कि इनकी फांसी के खिलाफ हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ चला गया था और वहाँ से उनको काउंसलर की रसाई देने का हुक्म हुआ था जो उनको फराहम कर दी गई है। अब लेट्स सी हाउ दिस करंट सेटल्स। लेके चलना चाहती हूँ आपको जनाब वकास कोंदल की जानिब, और एक प्रोग्राम हमारे शहर में आने जा रहा है, ये राहत फतेह अली खान का शो है। ये इंफॉर्मेशन हम अफजल पराचा के रेफरेंस से आपको पहुँचा रहे हैं। साहब अफजल पराचा के पास बर्लिंगटन का एक प्रोजेक्ट है, ब्रैम्पटन में स्टेला कॉन्डोज का एक प्रोजेक्ट है, जो शेरिडन कॉलेज के पास है, मार्कम का एक प्रोजेक्ट है, इनके पास लंदन में लग्जरी कॉन्डोज का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 5 साल की रेंटल गारंटी की जमानत दी जा रही है, 5 साल फ्री टेनेंट मैनेजमेंट की जमानत दी जा रही है, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। अफजल पराचा को आपको कॉल करना होगा 6478904205 8942405। वकास कोंदल से मुलाकात करवाती हूँ। भाई देखती आंखों से तो हम इजाज़त चाहेंगे। आई लव यू टोरंटो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर ऑल माय एसोसिएट्स, थैंक यू फॉर लेटिंग अस बी इन योर कार्स, इन योर on your televisions and everywhere. मगर वकास कोंदल से मुलाकात कराती हूँ, देखती आंखों से इजाजत, अल्लाह हाफिज। वकास अस्सलाम वालेकुम।
जी सुनते कानों को वालेकुम अस्सलाम।
This is a good one. This is a good one चंदा।
हम मैं चाह रहा था कि शायद मैं भी देखती आंखों वालों को भी सलाम कर सकता, लेकिन आपने उनसे इजाजत ले लिया तो
आपने हमारा दिल तोड़ दिया ना। आप फोन पे आए हो, अगर आप स्टूडियो में मौजूद होते तो हम तो 8 बजे तक आपके साथ बातें करते रहते।
चले आप भी क्या याद करेंगे, आप भी देखती आंखों को सलाम कर दें, हम 5 मिनट और हैं आपके साथ ही रहेंगे।
देखती आंखों सुनते कानों को विकास गोंदल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो ना आने की वजह भी आपको बताता चलूंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है, काफी जो भाग दौड़ है वो लगी हुई है शो के सिलसिले में।
सेकंड लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे,
टुमारो इज द शो, सेकंड लास्ट डे कह लें या लास्ट डे कह लें।
राहत अली खान साहब टोरंटो में तशरीफ ले आए हैं
जी, वो आज रात को पहुंचेंगे, राहत फतेह अली खान साहब आज रात को पहुंचेंगे,
आज रात।
और तैयारियां जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हैं। रॉय थॉमसन हॉल से भी मेरी जिया मश्ती साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी तमाम तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं। टिकटों की मैं अपडेट देता चलूं, जो लोकेशंस पे टिकट्स हैं वो आज रात तक हैं, आज रात 10 बजे तक आप टिकट्स जो ले लेंगे वही लोकेशंस पे टिकट है। इसके बाद ऑनलाइन और गेट पर टिकट अवेलेबल होंगी, कल ऑनलाइन और गेट पर, आज रात को ऑनलाइन और कल ऑनलाइन और गेट पर टिकट अवेलेबल होंगी, वहां से आप टिकट ले सकते हैं। कल शाम 8 बजे राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट विद फुल ऑर्केस्ट्रा, कवाली, फिल्मी सॉन्ग, सुफियाना कलाम, ये तीनों चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अदनान बशीर ऑफ रियल सिटीस्केप एंड जिया मश्दी ऑफ बजमैक्स.ca इनकी फखरिया पेशकश है ये, जरूर तशरीफ लाइए। शो आपको मुझे तो याद रहेगा, 770 के खसूसी शुक्रगुजार है जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन कैंपेन चलाई और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नंबर में टिकटें बेचने में कामयाब रहे और एक कामयाब शो जो है वो आपको प्रेजेंट करेंगे।
अल्लाह करे आप जल्दी इलेक्शन में शामिल हो जाएं, मेरा वोट यकीनन आपके साथ होगा।
मैं इलेक्शन में शामिल हूँ, मैंने इस दफा भी वोट दिया है और मैं वोट दे
नहीं, आप इनकरीब कैंडिडेट आने वाले हैं और इंशाल्लाह मेरा वोट आपकी तरफ होगा।
क्लियर करता चलूं, ऑन एयर क्लियर करता चलूं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर से नेवर कहते हैं ना, मैं नेवर कह रहा हूँ कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मुझसे इस चीज की तो ना रखे, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे में वो चीज नहीं है जो एक लीडर में होनी चाहिए। तो आप शो देखिए, हम कारोबार करेंगे, आपसे रास्ते में रहेंगे, आपकी मोहब्बतों के हम आपकी मोहब्बतों के वैसे ही मकरूज हैं, हम वैसे ही आपकी खिदमत करते रहेंगे।
ये देखा ना, हम आपकी मोहब्बतों के क्या सियासी, आई लव यू मेरा बच्चा। बहरहाल जिन लोगों ने अभी तक ये टिकट्स नहीं ली, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टिकट के हसूल के लिए आप वकास कुंदल को, आप बजमैक्स को 4905849551 8495551 8495551।
कड़ाई बॉयज की दोनों लोकेशन पे आज रात 10 बजे तक टिकट्स हैं,
और आज रात को 9 बजे तक इकबाल फूड रात 9 बजे तक खुला है। अगर आप में से सागा में है तो इकबाल फूड एरन मिल्स पे इकबाल फूड रात 9 बजे तक खुला है, आपको जाना होगा गैलेक्सी फॉरेन एक्सचेंज के बूथ में। इकबाल फूड आपका अपना एरन मिल्स साउथ ऑफ 403 एरन मिल्स पे इकबाल फूड गैलेक्सी फॉरेन एक्सचेंज के बूथ पे आपको टिकट्स मिलेंगी कल के शो की, पहुंच जाइए आप जी। बहुत शुक्रिया बच्चा,
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू। इजाजत दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट किया करती होती हूँ, मेरे मुजफ्फर को जरूर अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला जाने वालों की मंजिलों को आसान करे, जिंदगी को आसानियां दे और आसानियां आगे बांटने का शऊर भी दे, आमीन सुमा आमीन। मुजफ्फर अली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, आई लव यू टोरंटो, अल्लाह हाफिज।
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
To listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the best music.
I love the music.
I love radio, music, and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7 हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। लोकल लाइन पर रेडियो सर्विस के लिए डायल कीजिए 6475571017। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजेदार प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6478986245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरविन के साथ।
जुमेरात 17 अक्टूबर BBC के प्रोग्राम सेरबीन के साथ मैं हूं नादिया सुलेमान। बच्चों की उड़िया वीडियोस की खरीदो फरोख्त के सबसे बड़े ग्रोह का सुराग लगाने का अमरीकी दावा, लेकिन इसे रोकना कितना मुश्किल है। तज्जियाकार
बिटकॉइन जो भी बंदा पेमेंट कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, उसकी आइडेंटिटी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आइडेंटिटी की वजह से गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे डार्क वेब पे होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करे।
बारिशों में करंट लगने से होने वाली अमवात को रोकने के लिए क्वेटा की तालिबा की इजाद।
उस डिवाइस को अपनी शर्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जब वो उस जगह से जाएंगे तो उन्हें एक बल्ब ब्लिंक करेगा और एक बजर बीप करेगा, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाएगा कि करंट एरिया हमें यहाँ नहीं जाना।
तफसीलन ये मौजूदात आलमी खबरों के बाद खबरें उबैद मलिक से।
अमरीका, बरतानिया और जनूबी कोरिया के हुकाम ने बुध के रोज होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने दुनिया के एक ऐसी सबसे बड़े ग्रुप को हिरासत में लिया है जो बच्चों की उड़िया और जिंसी तशद्दुद पर मुश्तमिल तस्वीर और वीडियोस बनाने में मुलव्वस था। हुकाम ने बताया कि अमरीका, स्पेन और बरतानिया में 23 ऐसे कम उम्र मुतासरीन हैं जिन्हें मुतअद्दिद बार जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। ब्रसल्स में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास से कबल बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की मुजाकरात करने वाली टीमों के दरमियान नए ब्रेग्जिट मुआहदे पर इत्तफाक राय हो गया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट के जरिए मुतला किया कि उन्होंने एक नई बेहतरीन डील की है। جس سے کنٹرول دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ دونوں فریقین بریگزٹ معاہدے کی قانونی متن پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی منظوری کے لیے برطانوی اور یورپی پارلیمنٹ کی اجازت درکار ہوگی۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں ادارے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اس سال جولائی سے ستمبر کے درمیان متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران انہی ایام میں مارے جانے والے افراد کی تعداد میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ قطر میں جاری امن مذاکرات ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قطر کی وزارت محنت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک غیر ملکی کارکنوں کے لیے اسپانسرشپ سسٹم یعنی کفیل کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیمیں کفیل کے نظام پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ قطر کے وزیر محنت یوسف محمد عثمان نے کہا کہ ان کا ملک
خبریں پیش کر رہے تھے عبید ملک، حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اہم اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ پاکستان کتنا مطمئن کر پایا ہے ادارے کو، پروگرام میں آگے چل کر اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ امریکہ اور دیگر ملکوں کے تفتیشکاروں نے بچوں کی اوریاں اور جنسی تشدد پر مشتمل تصاویر اور ویڈیوز کی ایک بین الاقوامی ویب سائٹ کے مالک اور ویب سائٹ کے سینکڑوں صارفین کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ ویب سائٹ ڈارک ویب پر چائلڈ پورن کا سب سے بڑا کاروبار چلاتی ہے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں یہ کام غیر قانونی ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی وزارت قانون نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ بچوں کی پرنوگرافی کی ویب سائٹ چلانے والا شخص جنوبی کوریا کا 23 سالہ شہری جونگ وو سون ہے اور اس پر گرینڈ جیوری نے کل 9 الزامات عائد کیے ہیں۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ شخص انٹرنیٹ کے ڈارک ویب پر سب سے بڑا چائلڈ پرنوگرافی کا بازار چلاتا تھا۔ جونگ وو سون ویلکم ٹو ویڈیو نام کی ویب سائٹ چلاتا تھا اور اس پر چائلڈ پرنوگرافی کا اشتہار اور اس کی تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے نائب اٹرنی جنرل برائن بینکوسکی نے بیان میں کہا کہ بچوں کے جنسی استحصال کے ذریعے پروفٹ کمانے والی ڈارک نیٹ کی ویب سائٹس بدترین مجرمانہ فعل میں شامل ہیں۔ نائب اٹرنی جنرل نے کہا کہ دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے ایسے جرائم میں شامل لوگوں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے گا اور بچوں کو بچایا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ جن ملکوں میں اس سلسلے میں لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان میں برطانیہ، جنوبی کوریا، جرمنی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، برازیل اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے مطابق سن 2017 کے اگست ماہ میں ڈارک نیٹ پر ورچوئل کرنسی بٹ کوائن کے غیر قانونی لین دین کی تفتیش کی جا رہی تھی جب تفتیش کاروں کو ویلکم ٹو ویڈیو نامی ویب سائٹ کے بارے میں پتا چلا جو بٹ کوائن کے ذریعے پیمنٹ حاصل کرتی تھی۔ یہ ویب سائٹ جون 2015 میں شروع کی گئی تھی اور اسے امریکی تفتیش کاروں نے مارچ 2018 میں بند کروایا تھا اور اس کے مالک کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ویڈیوز کے قریب 10 لاکھ ڈاؤن لوڈز کیے جا چکے ہیں۔ اب امریکی اور دیگر ملکوں کی تفتیشی ایجنسیوں نے دنیا بھر کے کئی ملکوں کے تفتیشی اداروں کو ضبط کیے گئے سرور سے ملی معلومات مہیا کرائی ہیں، جس سے اس ویب سائٹ کے استعمال کرنے والے مزید لوگوں کی نشاندہی اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس کے نتیجے میں اب تک 38 ملکوں میں 337 لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ امریکہ میں بھی اس سلسلے میں 92 لوگوں کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں امریکہ، برطانیہ اور اسپین میں ویب سائٹ کے گینگ کے چنگل سے 23 بچوں کو بچایا بھی جا چکا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا سائبر کرائمز پر کام کرنے والی وکیل فاطمہ بٹ سے اور ان سے پوچھا کہ ڈارک ویب ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔
دیکھیے، جو انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ 3 ڈفرینٹ لیئر سے بنا ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ سرفیس ویب ہوتی ہے، سیکنڈ جو ہے وہ ڈیپ ویب ہے، اور جو تھرڈ ون ہے وہ ڈارک ویب ہوتی ہے۔ کوئی بھی سرچ انجن جیسے کہ گوگل وغیرہ یوز کرتے ہیں نا، تو جو اس کے اوپر ویب سائٹس وغیرہ شو ہوتی ہیں وہ ایز پر سرفیس ویب ہوتی ہیں۔ اچھا، اور جو اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ڈیپ ویب ہے، وہ پیجز ہوتے ہیں جن کو سرچ انجن ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ بینک کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اپنا अपना अकाउंट लॉग इन करने के लिए तो उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए होता है. तो जो इस तरह की वेबसाइट होती है ना, ये डीप वेब के अकॉर्डिंगली होती है. और जो आप डार्क वेब का पूछ रहे हैं, डार्क वेब वो वेबसाइट्स हैं जो सर्च इंजन डायरेक्टली कभी भी शो नहीं करते, और इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होती हैं या ऑथराइजेशन होती है जिनके थ्रू आप ये डार्क वेब को यूज कर सकते हैं.
क्या डार्क वेब पे लोग पैसे कमा सकते हैं, और अगर वो कमा सकते हैं तो उनको क्या रोकने का कोई तरीका है?
पाकिस्तान में या अगर इंटरनेशनली भी बात करते हैं, जो डार्क वेबसाइट्स हैं उनको लोग जो है वो पैसे कमाने के लिए ऑफ कोर्स यूज करते हैं. अब जो डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो ऑफ कोर्स इलीगल होती हैं, जैसे कि वहाँ पे लोग ड्रग्स को सेल कर रहे होते हैं, टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ओवरऑल पोर्नोग्राफी की जब आप बात करते हैं उस तरह की जो वीडियोज होती हैं वो सेल आउट हो रही होती हैं. उसके अलावा स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो लोग सेल कर रहे होते हैं. तो जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन वेबसाइट्स को मनी मेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं.
बच्चों की उरिया या फहश तस्वीर हैं तो क्या पाकिस्तान में उनसे मुतालिक वीडियोस या किसी किस्म का मवाद शेयर करने के से रोकने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून मौजूद हैं?
2016 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कराया जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कहते हैं, और वो इन सब क्राइम से डील करते हैं जो इंटरनेट को या इलेक्ट्रिक मीन्स को यूज करते हुए क्राइम्स कमिट हो रहे होते हैं. तो इसी तरह ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है इसमें सेक्शन 22 है स्पेसिफिकली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करते हैं. अब जो ये सेक्शन है इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोई बंदा इंटेंशनली कोई ऐसी वीडियो को प्रोड्यूस करता है या ऑफर करता है या आप उस वीडियो को इंटरनेट पे अवेलेबल कर रहे हो या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो जो क्राइम है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में वो उसमें फॉल करता है, और इसके ऊपर इस लॉ में वो पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं.
अच्छा, इंटरनेट पर डार्क वेब के जरिए इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है या क्या कर सकती है?
देखिए, डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं या लोग जो वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं उनको ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते. इसके लिए डिजिटल करेंसीज लाइक जैसे वो बिटकॉइंस हैं उसका यूज किया जाता है. तो बिटकॉइन जो भी बंदा पेमेंट कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, उसकी आइडेंटिटी को ट्रेस नहीं किया जा सकता. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये आइडेंटिटी की वजह से गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे डार्क वेब पे होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करे.
साइबर क्राइम लॉयर फातिमा भट्ट. FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास इतवार से पेरिस में जारी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए किए गए पाकिस्तान के इकदामात पर गौर किया जा रहा है. क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा? पाकिस्तान कितना मुतमईन कर पाया है इदारे को? यही सवाल मैंने पेरिस में FATF के इजलास की कवरेज के लिए मौजूद BBC के नामा निगार हुसैन अस्करी से किया.
FATF की जानिब से पाकिस्तान के लिए उनकी कोई तकरीबन 40 डिमांड्स या रिकमेंडेशंस आप कह लें पाकिस्तान के सामने उन्होंने रखी थी, जिसपे काफी अर्से से बात हो रही थी. जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने उनमें से अक्सर जो रिकमेंडेशंस थी या जो मुतालबात थे उन पे काम किया है. जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कोई तकरीबन 10 के करीब ऐसे मुतालबात थे जिन पे पाकिस्तान ने जुज़वी तौर पे काम किया है, 10 ऐसे मुतालबात हैं जिन पर पाकिस्तान ने थोड़ा ज्यादा काम किया है. लेकिन मुकम्मल अभी जो FATF चाहता है पाकिस्तान से उस पर भी काफी कुछ होना बाकी है. खास तौर पर ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, यानी ऐसे वो रकम जो कि दहशतगर्दी के लिए की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन रकम को रोकने के लिए जो सूबों में और मरकज में जो रबता है या जो कोऑर्डिनेशन है, जो ताउन है, उसका फुकदान है. एक तो FATF को ये काफी एतराज है. दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग पकड़े जाते हैं इस हवाले से उनका प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है, यानी उनको सजाएं बहुत कम मिलती हैं.
इंडिया के हुकाम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करा दें, और इसका एतराफ खुद पाकिस्तानी वजीर खारजा भी कर चुके हैं. क्या वाकई ऐसा है?
शाह महमूद कुरैशी ने जो पाकिस्तान के वजीर खारजा उन्होंने कहा, तो उसमें उसकी वजह एक ये भी थी कि जो इंडियंस ने जो यानी जो भारत के जो नुमाइंदे FATF के इन इजलासों में मौजूद हैं, उन्होंने ये वहाँ पे नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो खासतौर पर हाफिज सईद के खिलाफ कुछ खास काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो इत्तलात हैं वो ये कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है کے حافظ سعید کے جو منجمد اکاؤنٹس ہیں ان میں سے بھی ان کو رقوم نکالنے کی اجازت دی گئی ہے. حالانکہ پاکستان نے یہ یو این سے اقوام متحدہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے سارے اکاؤنٹس ہم نے فریز کر دیے ہیں, منجمد کر دیے ہیں, لیکن ان کو اس میں سے کچھ تھوڑی رقوم نکالنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں.
اچھا, اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فی الحال گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا, اور ایسا اس رپورٹ کی بنا پر کہا جا رہا ہے جو ایشیا پیسیفک گروپ نے اس اجلاس کے شروع ہونے سے قبل جاری کی تھی. آپ نے کیا ریڈ کیا ہے اب تک؟
جو اطلاعات ہیں جو مقامی میڈیا کہہ رہا ہے اور جو باقی دنیا میں جو ذرائع ابلاغ میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جی وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے.
نامہ نگار حسین عسکری. رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا, جہاں مبینہ طور پر ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں کی فائرنگ سے 3 ٹرک ڈرائیور ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں. کراچی پولیس کے مطابق اس واقعے کی رپورٹ ایف ڈبلیو او کے نامعلوم گارڈز کے خلاف درج کی گئی ہے اور تفتیش جاری ہے. دوسری جانب ہلاک ہونے والے ڈرائیوروں کو ان کے آبائی علاقے شمالی وزیرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار خدائے نور ناصر.
کراچی کے علاقے سپر ہائی وے میں ٹرک ڈرائیوروں نے اپنا احتجاج آج صبح سویرے اس وقت ختم کیا جب ان کے مطالبے پر پولیس نے ایف ڈبلیو کے گارڈز کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی. پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز کراچی کے سپر ہائی وے پر 3 ٹرک ڈرائیور مبینہ طور پر ایف ڈبلیو کے سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. کراچی میں ٹرانسپورٹرز اتحاد کے ایک رہنما شیر ایوب وزیر کی مدعیت میں پولیس رپورٹ درج کر لی گئی ہے, جن کے مطابق انہوں نے احتجاج ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ختم کیا.
صبح یعنی صبح 4 بجے ہم نے احتجاج ختم کرایا. آپ کو پتا تھا کہ کراچی میں ایف ڈبلیو والوں کی طرف سے ڈرائیوروں کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی, جس کے نتیجے میں 3 ہمارے ڈرائیور شہید ہوئے تھے اور 5 اچھی زخمی ہوئے تھے. جن نماز جنازہ یہاں کراچی میں ادا کیا, ہماری برادری نکل آئی تھی, اس کے بعد ان کو آبائی علاقے میں روانہ کیا گیا.
ٹرانسپورٹرز اور ٹرک ڈرائیوروں کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے وزن کے تنازع پر ایف ڈبلیو او اور موٹر وے پولیس نے سامان سے لدے ٹرک اور بڑے ٹرالرز کو روک رکھا تھا. ان کے مطابق ٹرکوں اور بڑے ٹرالرز کی طویل لائن لگنے کے سبب صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرائیوروں نے ایف ڈبلیو او اور موٹر وے پولیس سے مطالبہ کیا کہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے, مگر ایسا نہیں ہوا. ٹرک ڈرائیوروں کے مطابق اجازت نہ ملنے پر ٹرک اور ٹریلر ڈرائیور احتجاجاً ایک ساتھ اپنی گاڑیاں لے کر موٹر وے کی جانب بڑھنا شروع ہوئے, جس پر ایف ڈبلیو کے اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ شروع کر دی. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ایاز اسلم. پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام نیشنل T20 کرکٹ کپ میں بلوچستان نے ساؤدرن پنجاب کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. آج کے میچ میں ساؤدرن پنجاب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 کھلاڑی آؤٹ پر 144 رنز بنائے. 145 رنز کا ہدف بلوچستان نے 19.3 اوورز میں 3 کھلاڑی آؤٹ پر حاصل کر لیا. جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے اوپنر ایڈن مارکرم انجری کے باعث انڈیا کے خلاف تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکیں گے. ایڈن مارکرم انڈیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوران کلائی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وطن واپس چلے گئے ہیں. دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ 19 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے. انڈیا کو 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے. یو ایف اے ویمنز چیمپئن لیگ میں آج بارسلونا فیمینینو کی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ مینسک ویمن سے ہوگا. ٹینس کے ٹورنامنٹ کریملین کپ میں ویمن سنگل کے ایک مقابلے میں نیدرلینڈ کی کیکی بیٹنز نے اسٹونیا کی کایا کنیپی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی. دوسری جانب ٹینس کے ٹورنامنٹ یورپین اوپن کے مینز سنگلز مقابلوں میں آج برطانیہ کے اینڈی مرے اور یوراگوئے کے پبلو کوئیواس ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گے. اسی ٹورنامنٹ میں مینز ڈبل کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کے اسام الحق قریشی اور ان کے میکسیکن ساتھی سانتیاگو گونسالیس کو بیلجیم کے یوران ولیخا اور ان کے ہم وطن سینڈر یالے کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. رگبی ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مقابلے سنیچر سے شروع ہو رہے ہیں. پہلے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا اور دوسرے کوارٹر فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا. گزشتہ دنوں ایک فائٹ کے دوران زخمی ہونے والے امریکی باکسر پیٹرک ڈے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں. شکاگو میں ہونے والے سپر ویلٹر ویٹ مقابلے میں پیٹرک ڈے اور چارلز کونوویل مد مقابل تھے. فائٹ کے 10th راؤنڈ میں سر پر مکہ لگنے کے باعث انہیں باکسنگ رنگ سے ہسپتال پہنچایا گیا تھا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی ایاز اسلم سے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر, جہاں ایک دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ویڈیو موجود ہے. تصور کریں کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے موبائل فون نکل جائے, کیسی ہوگی دنیا موبائل فون کے بغیر. ایک امریکی فوٹوگرافر نے اپنی فوٹو سیریز میں اس ہی کی عکاسی کی ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو آج انقرہ میں موجود ہیں, جہاں وہ ترک صدر سے ملاقات میں ایک بار پھر زور دیں گے کہ ترکی شمال مشرقی شام میں کردوں کے خلاف کارروائی بند کر دے. بی بی سی کو اس سے قبل معلوم ہوا کہ صدر ٹرمپ نے ترک صدر کو ایک خط لکھا تھا جسے ترکی نے مکمل نظر انداز کیا. ادھر شام کے سرحدی شہر راسل عین میں لڑائی جاری ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازش ظفر کی زبانی.
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر کا ایک خط کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا. اس خط پر 9 اکتوبر کی تاریخ درج ہے اور یہ شام سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد بھیجا گیا. اس خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر اردوان سے کہا تھا, زیادہ بڑے بننے کی کوشش نہ کرو, احمق مت بنو. ترکی میں صدر کے قریبی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ صدر اردوان کی جانب سے اس خط کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا تھا. جس دن یہ خط موصول ہوا اسی دن ترکی نے سرحد پار کردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا. شمال مشرقی شام میں کردوں کے صحت عامہ کے ذرائع کے مطابق ایک ہفتے قبل شروع ہونے والے ترکی کے حملوں کے بعد سے اب تک 218 شہری ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ دوسرے ذرائع یہ تعداد کم بتاتے ہیں. اس سے پہلے شام کے سرحدی شہر راسل عین میں گولہ باری اور فضائی حملوں کی اطلاعات تھیں. شام میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق کرد سرنگوں کے استعمال سے دفاعی کارروائی کر رہے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک کرد صحافی کا کہنا تھا کہ راسل عین میں حالات ابتر ہیں.
ترکوں نے ہر حربہ آزمایا ہے, میرا مطلب ہے راسل عین بالکل ہی سرحد پر ہے تو شیلنگ کرنا بہت آسان ہے, لیکن وہ ہر طرف سے بمباری کر رہے ہیں تاکہ علاقے کو 3 اطراف سے گھیرے رکھیں. اب تک وہ ناکام ہی رہے ہیں, لیکن بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں.
ادھر جرمنی کی وائس چانسلر اینگلا میرکل نے پارلیمنٹ میں ترکی سے اپیل کی ہے کہ وہ شام میں مسلح کارروائی بند کرے.
Das wiederhole ich hier an dieser Stelle.
اینگلا میرکل کا کہنا تھا کہ ترکی کے اقدامات کا براہ راست اثر اس کے پڑوسی یورپی ممالک پر ہوتا ہے, اور شام کے تنازع میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی.
شام پہلے ہی کئی مشکلات کا شکار ہے, اور پھر ترکی کے آپریشن کے بعد انسانی بحران مزید بڑھے گا. بہت سے لوگ اس کا شکار ہوں گے, اور ہزاروں لوگ جن میں بچے بھی شامل ہوں گے علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے. اس مخمصے کے سنگین جغرافیائی اور سیاسی نتائج نکلیں گے, اس لیے ان حالات میں ہماری حکومت ترکی کو اسلحہ نہیں دے گی, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے دوسرے یورپین پارٹنر بھی یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں.
اینگلا میرکل کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے فوج واپس بلانے کے عمل سے خطے میں روس اور ایران کا کردار مضبوط ہوگا, اور ترکی کے اقدام کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے.
ترکی اور شام کے تنازع کی تازہ صورتحال بتا رہی تھی نازش سفر. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور دیگر علاقوں میں بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں میں کرنٹ کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. کوئٹہ کے ایک نجی اسکول میں 7ویں جماعت کی ایک طالبہ اور ان کی ٹیچرز نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو کسی کھمبے یا کسی اور چیز میں کرنٹ سے خطرے کے بارے میں خبردار کرتی ہے. یہ ڈیوائس کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے, کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد قاسم.
یہ ڈیوائس کوئٹہ میں نوا قلعے میں واقع ایک نجی اسکول کی 7ویں کلاس کی طالبہ عریشہ اور ان کی ٹیچرز نے مل کر تیار کیا ہے. عریشہ کہتی ہیں کہ جب کراچی میں بارشوں کے باعث بجلی کے کمبوں میں کرنٹ کی وجہ سے لوگوں بالخصوص بچوں کی ہلاکت ہوئی تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا.
ہم لوگوں نے ماڈل بنایا جس کا نام اسمارٹ شرٹ ہے. یہ ہم نے اس مقصد سے بنایا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بارشوں کے دوران بہت سے بچے کرنٹ کی وجہ سے مر چکے تھے, وہ جس ایریا سے گزرتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کرنٹ ہے, تو ہم نے ایسی ڈیوائس بنائی ہے جو انہیں الرٹ کرے گی.
عریشہ نے بتایا کہ اگر بجلی کے کسی کمبے یا کسی اور چیز کی باڈی میں کرنٹ ہو تو یہ ڈیوائس اس کے قریب جانے یا اس کو چونے سے خبردار کر دیتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ قمیض یا شرٹ میں لگایا جا سکتا ہے.
कि जिस जगह पे करंट होगा जब भी वो उस डिवाइस को अपनी शर्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जब वो उस जगह से जाएंगे तो उन्हें एक बल्ब ब्लिंक करेगा और एक बजर बीप करेगा जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाएगा कि ये करंट एरिया हमें यहाँ नहीं जाना है।
स्कूल की प्रिंसिपल फरजाना एजाज ने कहा कि बिजली के करंट से लोगों की हलाकत एक बड़ा मसला है। उन्हें खुशी है कि उनकी स्कूल के बच्चों ने इसका हल निकाला है।
तो हमारे बच्चों ने सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा जो है हम कोई ऐसी चीज बनाए जो इतनी सस्ती भी हो अफोर्डेबल भी हो।
फरजाना एजाज कहती है कि इस डिवाइस को आसानी के साथ मार्केट भी किया जा सकता है।
इसको मार्केट किया जा सकता है, इसको शर्ट में यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। हमने यहाँ पे एक मॉडल किया भी था, ठीक है, इसको कोशिश की गई थी कि इंटीग्रेट करें, लेकिन जाहिर बात है हम मार्केट लेवल पे काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हैं हमने सही जितना हो सका, लेकिन इस सर्किट को यूज करके हम एक फायदेमंद कर सकते हैं।
आप समझते होंगे कि इसको बनाने पर बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। फरजाना एजाज के मुताबिक हैरत की बात यह है कि इस पर सिर्फ 200 रुपए का खर्चा आया है। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
और अब सामईन की आरा पर मबनी हफ्तावार फीचर आपकी बात।
BBC उर्दू सर्विस के तमाम सुनने वालों को खुदा इकराम का सलाम। माहौलियाती आलूदगी एक आलमगीर मसला है जिसे निमटना सिर्फ हुकूमत या किसी इदारे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर फर्द अपनी अपनी जगह इसके हल के लिए काम कर सकता है। ऐसी ही काविश का जिक्र किया पाकिस्तान के एक शहरी गुलाम रसूल ने।
मैं 35 हजार पौधे लगा चुका हूँ, इसके अलावा सीड बाल पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करा रहा हूँ उसके जरिए शेजरकारी, और कई लाख मैंने बीज मुख्तलिफ जगहों पर गिराए हैं, और मैं जितने भी सियासी मुकाम हैं उनकी सफाई करता हूँ, सफाई करके सोशल मीडिया के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करता हूँ।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से अमन व अमान की शिकायतें मौसूल होती रहती हैं। कुछ इलाकों में ये शिकायतें तवातुर के साथ आती हैं, इनमें से एक इलाका तुरबत भी है। वहीं से BBC के एक सामे अब्दुल मजीद ने हमें अपनी ये शिकायत और तजावीज भेजी हैं।
तुरबत शहर और जिला केस में बदमनी आम हो चुकी है, आए दिन डकैती लूटमार चोरी कत्ल की वारदातें आम हो चुकी है, पुलिस और रेलवे फोर्स बेबस हो चुके हैं। सूबे हुकूमत वजारत दाखिला तुरबत पुलिस और लेडीज को जदी दाखिला और जदीद दफ्तर बंद गाड़ियाँ दे, सिंध और पंजाब के फर्श में डीजल स्टॉक और डोल्फिन स्टॉक की तरह कमांडोज फोर्सेज तश्कील दे।
बलूचिस्तान के बाद सिंध का रुख करें तो आवाम में तालीम के शोबे में मौजूद मसाइल पर बेचैनी पाई जाती है। कोई स्कूल होते हुए भी असातिज़ा की अदम दस्तियाबी की रुदाद सुनाता नजर आ रहा है तो किसी को तनख्वाह न मिलने पर हुकूमत से शिकवा है।
हमारा गांव में तकरीबन 3000 जो है बहुत आदमशुमारी है। हमारे पूरे इलाके में 100 वोट आजाद जबोल में प्राइमरी स्कूल है जिसमें एक टीचर है और 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 400 के लगभग करीब बच्चे इस वक्त जेर तालीम है, लेकिन स्कूल में इमारत में कोई भी हाल नहीं है। हमारा तो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, छत उसकी क्रैक हो चुका है। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी तालीम का निजाम ठीक किया जाए।
मैं सुमर अहमद कोर्ट बैठे जिला जी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी का टीचर हूँ। हमारी सैलरी हो गए नहीं मिली है।
पाकिस्तान के सूबे सिंध ही में पीने के साफ पानी का मसला लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। जिंदगी की इस बुनियादी जरूरत तक रसाई ना मिलने पर हमारे एक सामे ने शदीद परेशानी का इजहार किया है।
बात कर रहा हूँ, पानी की सहूलत हमें बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल प्यास से मर रहे हैं। गंदा पानी है जी, मच्छर जी खाते गंदा पानी है। हम 20 रुपए में केला खरीदते हैं जो टैंकर वगैरह आते हैं। अपील करता हूँ इमरान खान को मेहरबानी करके हमारे शहर को पानी की सहूलत दी जाए।
अब बात सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड की, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से की गई तवील हड़ताल ने अवाम में इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी है और अब वो इस मामले के हल के मुंतजर हैं।
खालिस्तान गाँव वर्तेली कर गए मालाकंड जेल की कैदी के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हड़ताल और एहतजाज की जा रही है वो उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म इख्तियार किया और बहुत तवील हो गया, लिहाजा अपन में बैठ गए और मसला को बातचीत के जरिए हल किया गया।
अपनी राय का इजहार करने के लिए हमारे लैंडलाइन नंबर पर मुफ्त कॉल मिलाइए। हमारा नंबर है 0800 2202-7500-22275। ख्याल रहे कि मोबाइल से करने पर ये कॉल फ्री नहीं है। इसके साथ ही खुदा इकराम को इजाजत दीजिए।
प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कौन से मौजूदात आपके ख्याल में सरबीन में शामिल होने चाहिए? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफा BBC उर्दू हाजिर है। इसके अलावा आप इनफरादी तौर पर भी ट्विटर पर मुझसे और सरबीन की टीम से राबिता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @NadiaSuleiman। इसके